वचन। नमस्कार श्रोताओ, बाइबल अध्ययन कार्यक्रम सत्य वचन में आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करते हैं। हमेशा की तरह आपका अपना प्रिय बाइबल अध्ययन कार्यक्रम लेकर हम आपकी सेवा में उपस्थित हैं। जैसा कि आपको मालूम है कि इन दिनों हम पवित्र शास्त्र बाइबल के नए नियम में से याकूब की पत्री का विस्तार पूर्वक अध्ययन कर रहे हैं और जिसका मुख्य विषय है मसीही व्यवहारिक जीवन। श्रोताओ, हमें पूरा विश्वास है कि इस अध्ययन से आपको काफी लाभ मिल रहा है। तो आइए आज के इस बाइबल अध्ययन में हम सम्मिलित हों, लेकिन इससे पहले सुनते हैं एक मधुर गीत।
प्रिय मित्र, प्रभु यीशु के पवित्र और सामर्थी नाम में आप सबको मेरा नमस्कार। मैं कुशल पूर्वक हूँ और मुझे आशा है कि आप सब भी अपने प्रियों के साथ परमेश्वर की निकटता में रहते हुए कुशल पूर्वक हैं और हमेशा की तरह आज फिर से परमेश्वर के वचन में से सुनने और सीखने के लिए तैयार बैठे हैं। मैं आप सभी श्रोता मित्रों का इस कार्यक्रम में स्वागत करता हूँ और अपने उन सभी नए मित्रों का भी जो पहली बार हमारे इस कार्यक्रम को सुन रहे हैं। मैं आपको बता देना चाहता हूं कि हम सब इन दिनों बाइबल में से याकूब की पत्री नामक पुस्तक का अध्ययन कर रहे हैं। पिछले अध्ययन में हम जीव के बारे में देख रहे थे जो बोलने में चूकता नहीं, वही तो सिद्ध मनुष्य है और ऐसा मनुष्य अपनी सारी देह पर भी लगाम लगा सकता है, जैसे घोड़े के मुंह में लगाम लगाकर उसके सारे शरीर को अपनी इच्छा के अनुसार चलाया जा सकता है। बड़े बड़े जहाज भी छोटी सी पतवार के द्वारा माझी की इच्छा के अनुसार चलते हैं। इसी प्रकार जीव भी छोटी सी है, परंतु वह या तो संपूर्ण जीवन को नाश कर देती है या ऊंचा उठा देती है। जीव ही से मनुष्य प्रकट होता है कि वह क्या है। यीशु के अभियोग के समय पत्रस से भी कहा गया था कि उसकी बोली उसे गलीली बताती है। तो मित्रों, मैंने आपको बताया था कि जीव किस प्रकार से हमें हानि पहुंचाती है। आज हम उससे आगे अपने अध्ययन में बढ़ेंगे, लेकिन इससे पहले आइए हम सब प्रार्थना करें और परमेश्वर से आज के अध्ययन के लिए भी सहायता मांगे। हमारे जीवित और सामर्थ्य पिता परमेश्वर, हम आपको हृदय से धन्यवाद देते हैं हमारे प्रत्येक श्रोता भाई बहनों के लिए जो प्रतिदिन आपके वचन को सुनने के लिए तैयार बैठते हैं। आज जब हम फिर से याकूब की पत्री से अध्ययन करते हैं, हमारी प्रार्थना है कि आप हमारे प्रत्येक श्रोता भाई बहनों को अपनी बुद्धि, ज्ञान और समझ प्रदान कीजिए, ताकि हर एक जब आपके वचन में से सुनते और सीखते हैं तो निश्चित रूप से आपका वचन उनके जीवन में कार्य करने पाए। आप मुझसे बातचीत करें, मुझे भी सिखाएं, ताकि हम सब मिलकर आपको धन्य कहने पाएं। इस समय हमारी प्रार्थना उन भाई बहनों के लिए है जो अपने जीवन में निराश हैं, परेशान हैं, चिंताओं में हैं या किसी न किसी प्रकार की बीमारी में हैं, आर्थिक तंगी में हैं। पिताजी, आप उनकी भी सहायता करें, उन्हें स्पर्श करें, उनके जीवन से बोले और बातचीत करें, ताकि वे आपसे प्यार कर सकें, जानने पाए कि आप उनकी चिंता करते हैं, आप उनकी जरूरतों को समझते हैं। हाँ प्रभु, आप उनकी सहायता कर रहे हैं, इसलिए धन्यवाद। आज आप हमसे बातचीत करेंगे, इसलिए धन्यवाद। प्रार्थना ईश्वर के नाम से मांगते हैं, आमीन। मेरे मित्रों, आइए अब हम अपने अध्ययन में आगे बढ़ेंगे। याकूब की पत्री 3 अध्याय उसके 5 और 6 पद में इस प्रकार से लिखा हुआ है। याकूब की पत्री 3 अध्याय उसके 5 और 6 पद में लिखा है, वैसे ही जीभ भी एक छोटा सा अंग है और वह बड़ी बड़ी डींगे मारती है। देखो, थोड़ी सी आग से कितने बड़े वन में आग लग जाती है। जीभ भी एक आग है। जीभ हमारे अंगों में अधर्म का एक लोक है और सारी देह पर कलंक लगाती है और जीवन गति में आग लगा देती है और नरक कुंड की आग से जलती रहती है। मेरे मित्रों, यह सच है कि जीभ आग है और नरक कुंड की आग से जलती है। यहां जो शब्द मूल भाषा यूनानी में काम में आया है, वह उस स्थान का शब्द है जहां आग बुझती नहीं थी। वह एक घाटी थी जहां कूड़ा जलता रहता था। प्रभु यीशु ने 11 बार इस शब्द का प्रयोग किया है और नए नियम में यह शब्द 12 बार आया है। यह अनुवाद सर्वथा सही है, नरक कुंड की आग से जलती रहती है। मेरे प्रियो, यह बड़ा ही प्रभावी है कि याकूब जीभ की तुलना आग से करता है। आपने शायद जंगल की आग देखी होगी, वह बड़ी ही विनाशकारी होती है। उसे बुझाने में कई दिन और कई महीने लग जाते हैं और कई लोग मर भी गए हैं। आग निसंदेह मनुष्य का सबसे बड़ा मित्र है, प्रकृति की और हमारी भी। कुछ इतिहासकारों का कहना है कि सभ्यता का आरंभ तब हुआ था जब मनुष्य ने आग की खोज कर ली थी। यदि वश में रखी जाए तो आग हमें गर्मी देती है, भोजन पकाने में सहायता करती है और उद्योगों के लिए बिजली बनाने में सहायता करती है। परंतु नियंत्रण से बाहर हो जाने पर वह बड़ी खतरनाक हो जाती है। घर में आग लग जाए तो वह एक त्रासदी है। हमारी आज की सभ्यता भी आग पर काबू पाने में असमर्थ है। 1966 में आग ने लंदन शहर को नष्ट कर दिया था। अमेरिका के शिकागो नगर में सन 1871 में एक गाय ने लात मारकर लालटेन गिरा दी थी, जिससे उस शहर में भीषण आग लग गई। आज भी आग की महाविनाश को देखा जा सकता है। जीव आग के समान है, यदि वह वश में रहे तो आशीष है, परंतु वश में न रहे तो विनाशकारी है। वही आग जो उपचार का काम करती है, श्राप भी बन जाती है। नीति वचन 12 अध्याय के 18 पद में हम पढ़ते हैं, ऐसे लोग हैं जिनका बिना सोच विचार का बोलना तलवार के समान चुभता है, परंतु बुद्धिमान के बोलने से लोग चंगे होते हैं। जी हाँ, जीभ घातक तलवार के समान हो सकती है, परंतु वह चंगा करने हारी भी होती है। जीभ का कैसा चित्रण यहाँ पर है। नीति वचन 15 के 14 में भी हम पढ़ते हैं, समझने वाले का मन ज्ञान की खोज में रहता है, परंतु मूर्ख लोग मूर्खता से पेट भरते हैं। मेरे प्रियो, मैं उसी कहावत को फिर से दोहराता हूं, तू अनकहे शब्दों का स्वामी है, परंतु कहे गए शब्द तेरे स्वामी है। यदि आपने कुछ कहा नहीं तो आप उत्तरदायी नहीं है, परंतु यदि आपने कुछ कहा तो आप दोषी ठहरेंगे। मैंने अपने अनुभव से सीखा है कि जीभ की चूक, विशेष करके रेडियो पर, जीभ की चूप के परिणाम बहुत बुरे होते हैं। पत्रस की जीभ ने उसे धोखेबाज ठहराया। उसने प्रभु यीशु का इनकार किया। पेंतिकोस्त के दिन प्रभु ने क्या काम में लिया था? बिना सोचे विचारे बोलने वाले पत्रस की जीभ। जीभ या तो श्राप होती है या आशीष। आग के समान जीभ कलीसिया को ध्वंस कर रही है और ध्वंस कर सकती है, समाज को ध्वंस कर सकती है, नगर को राख कर सकती है, देश का सर्वनाश भी कर सकती है। और यही कारण है कि हमें जीभ को नियंत्रण में रखना है। याकूब आगे कहता है तीसरे अध्याय उसके 7 और 8 पद में, क्योंकि हर प्रकार के वन पशु पक्षी और रेंगने वाले जंतु और जलचर तो मनुष्य जाति के वश में हो सकते हैं और हो भी गए हैं, पर जीव को मनुष्य में से कोई वश में नहीं कर सकता। वह एक ऐसी बला है जो कभी रुकती ही नहीं, वह प्राणनाशक विष से भरी हुई है। मेरे मित्रों, मुझे याद है कि जब मैं छोटा था, शहर में सर्कस आता था, तब हम युवाओं का समूह किसी एक घर में एकत्र होकर सहभागिता करते थे और देर से रात का भोजन भी हम सब करते थे और फिर जाकर सर्कस वालों को सामान और जानवर उतारते हुए देखते थे और सर्कस मैदान में वे परेड करते थे। हम उनका तंबू गाड़ना भी देखते थे। एक बार हमें उन्होंने अपने साथ खाना खाने के लिए बुलाया। ओह, वह कैसा उत्साह का समय था। उनका प्रशिक्षक शेर के बच्चों को गोद में उठाकर लाता और उनके साथ खेलता था। हमने पूछा कि वह ऐसा क्यों करता है, तो उसने कहा, मैं ऐसे शेर के पिंजरे में कभी नहीं जाऊंगा जिसे मैंने पाल पोस कर बड़ा किया हो। बूढ़े शेर को प्रशिक्षण नहीं दिया जा सकता है। मैं इन बच्चों के साथ आरंभ करके उन्हें खूंखार दिखने वाले शेर बनाता हूं और अपने साथ पिंजरे में ले जाता हूं। वे मुझे जानते हैं और मैं उन्हें जानता हूं। जी हां, आप शेर को प्रशिक्षण दे सकते हैं, आप हाथी को प्रशिक्षण दे सकते हैं, परंतु जीभ को वश में नहीं रख सकते। किसी ने कहा है, संसार की सबसे अधिक अप्रशिक्षित वस्तु की मांद दांतों के पीछे है। उसे न तो चिड़ियाघर में रखा जा सकता है, न सर्कस में रखा जा सकता है और न ही प्रशिक्षित किया जा सकता है। केवल मुक्ति प्राप्त देह में पुनर्जीवित जीव जिसे परमेश्वर ने प्रशिक्षण दिया है, वही परमेश्वर के लिए काम में ली जा सकती है। मेरे प्रियो, यह रोचक बात है कि पौलुस भी कहता है रोमियों की पत्री 10 अध्याय उसके 9 पद में, यदि तू अपने मुंह से यीशु को प्रभु जानकर अंगीकार करे और अपने मन से विश्वास करे कि परमेश्वर ने उसे मरे हुओं में से जिलाया, तो तू निश्चय उद्धार पाएगा। दूसरे शब्दों में जीव और मन को सामंजस्य में होना है। मत्ती रचित सुसमाचार 12 अध्याय उसके 34 पद में यीशु ने कहा, जो मन में भरा है वही मुंह से आता है, यानी कि मुंह पर आता है जो आप बात बोलते हैं। किसी ने कहा है, मन के कुएं का पानी मुंह की बाल्टी से बाहर निकाला जाता है। यदि आपके मन में कुछ है तो आप कभी न कभी उसे मुंह से निकालेंगे। सुसमाचार लेखक अति सावधानी से कहता है कि प्रभु यीशु ने गूंगे मनुष्य के मुंह को छुआ। मेरे मित्रों, यदि उसने आपको छुआ है तो उसने आपके मुंह को छुआ है। आगे हम देखते हैं याकूब की पत्री 3 अध्याय उसके 9 और 10 पद में, यहां पर लिखा है, इसी से हम प्रभु और पिता की स्तुति करते हैं और इसी से मनुष्यों को जो परमेश्वर के स्वरूप में उत्पन्न हुए हैं शाप देते हैं। एक ही मुंह से धन्यवाद और शाप दोनों निकलते हैं। हे मेरे भाइयों, ऐसा नहीं होना चाहिए। हमारी जीभ परमेश्वर की स्तुति भी करती है और उसकी निंदा भी करती है। जीभ मनुष्य को जानवर से ऊपर उठाती है, क्योंकि मनुष्य वन मानुष नहीं है। मनुष्य मनुष्य के साथ और परमेश्वर के साथ संपर्क कर सकता है। मनुष्य यदि रविवार को आराधना में गीत गाए और सप्ताह भर दुष्ट आत्मा की बोली बोले तो बाइबल उसे ढोंगी कहती है। आप जो चाहे कह सकते हैं, परंतु सत्य यही है। मेरे मित्रों, मुझे याद है कि जब मैं परमेश्वर की सेवा में आगे बढ़ना चाहता था, तब मेरे पादरी साहब ने मुझसे कहा था, मैं आशा करता हूं कि तुम एक सच्चे प्रचारक, परमेश्वर के सच्चे सेवक बनोगे। मैं विश्वासी नहीं हूं क्योंकि युद्ध काल में मेरा अनुभव अच्छा नहीं रहा है, मैं अपने जीवन में अच्छा नहीं रहा हूं। तब उसने कहा कि जब वह मुझे प्रभु की सेवा में आगे बढ़ते हुए देखेगा तो वह बहुत ही आनंदित होगा। और उसने मेरे लिए प्रार्थना की और मैं परमेश्वर को धन्यवाद देता हूं कि आज मैं प्रभु की सेवा में हूं। मेरे प्रियो, उस समय तो वह चुप रहा, परंतु बाद में मैंने जाना कि अधिक न बोलने के कारण परमेश्वर हमें आशीषित करता है। मेरे प्रियो, मैं आपको बताना चाहता हूं कि कई बार हम अपने जीवन से उन शब्दों को प्रयोग में लेते हैं जिसे मुझे और आपको नहीं लेना है। और यहां पर हम देख रहे हैं कि हम अपने इन्हीं मुंह से परमेश्वर की स्तुति करते हैं, और इतना ही नहीं, हम इन्हीं मुंह से हम परमेश्वर के विरोध में भी बातें कहते हैं। मनुष्य परमेश्वर की स्तुति कर सकता है तो वह उसकी निंदा भी कर सकता है। प्रभु यीशु ने कहा कि मनुष्य के मुंह से वही निकलता है जो उसके मन में होता है। यहां पर हम देखते हैं कि हमारे मुंह के अंदर जो जीभ है बहुत ही कीमती है, बहुत ही महत्वपूर्ण है। यही जीभ मुझे जीवन दान देती है और यही जीभ मुझे नाश कर देती है। याकूब आगे कहता है 3:11-12 में, क्या सोते के एक ही मुंह से मीठा और खारा जल दोनों निकलता है? हे मेरे भाइयों, क्या अंजीर के पेड़ में जैतून या दाख की लता में अंजीर लग सकते हैं? वैसे ही खारे सोते से मीठा पानी नहीं निकल सकता। दूसरे शब्दों में, मनुष्य दोगला, दुचित्ता और दोधारी जीभ का हो सकता है। वह अच्छी और बुरी दोनों बातें कर सकता है, परंतु इस पृथ्वी पर तो कोई भी सोता मीठा और कड़वा पानी एक साथ नहीं देगा, और न ही कोई वृक्ष मीठा और कड़वा फल देगा। मेरे प्रियो, अब जीभ सच्चा विश्वास भी प्रकट करती है, क्योंकि वह उस मुंह में है जिससे विश्वास का अंगीकार किया जाता है जो मन से उभरता है। याकूब की पत्री 3:13 में लिखा हुआ है, तुम में ज्ञानवान और समझदार कौन है? जो ऐसा हो वह अपने कामों को अच्छे चाल चलन से उस नम्रता सहित प्रकट करे जो ज्ञान से उत्पन्न होती है। जीभ सच्चा विश्वास प्रकट करती है, वह परमेश्वर की गवाही देती है, वह बुद्धि की बात करती है। याकूब 3:14 में लिखा हुआ है, पर यदि तुम अपने अपने मन में कड़वी डाह और विरोध रखते हो तो सत्य के विरोध में घमंड न करना और न तो झूठ बोलना। मेरे मित्रों, कलह और कड़वाहट निश्चय ही विश्वास के फल नहीं है, परंतु जीभ उन्हें उत्पन्न कर सकती है। याकूब मूर्ख और बुद्धिमान विश्वासी की जीभों में अंतर दिखा रहा है। अनियंत्रित जीभ सुनने वालों के मन में संदेह उत्पन्न करती है कि बोलने वाला विश्वासी है या नहीं, परमेश्वर की संतान है या नहीं। मैं विश्वास नहीं कर सकता कि कोई 6 दिन गालियां बके और रविवार के दिन आराधनालय में परमेश्वर की स्तुति के गीत गाए, गंदे चुटकुले सुनाने के बाद रविवार को संडे स्कूल में पढ़ाए, प्रभु यीशु के प्रेम के बारे में सिखाए। जीभ ऐसा कर सकती है और कलह भी उत्पन्न कर सकती है। मेरे प्रियो, यहां लिखा है, सत्य के विरोध में घमंड न करना और न तो झूठ बोलना। झूठी जीभ वह है जो सप्ताह के 6 दिन अपनी बातों से प्रभु यीशु का इनकार करती है। याकूब 3:15 में लिखा है, यह ज्ञान वह नहीं जो ऊपर से उतरता है, वरन सांसारिक और शारीरिक और शैतानी है। ध्यान दीजिए, याकूब स्पष्ट कहता है कि कलह और ईर्ष्या परमेश्वर से उत्पन्न नहीं है, वे सांसारिक और शारीरिक और शैतानी हैं। ज्ञान को जानकारियों का घमंड होता है, परंतु बुद्धि दीन है कि वह कुछ नहीं जानती। याकूब की पत्री 3:16 में आगे हम पढ़ते हैं, क्योंकि जहां डाह और विरोध होता है वहां बखेड़ा और हर प्रकार का दुष्कर्म भी होता है। अनियंत्रित जीव ईर्ष्या और कलह उत्पन्न करती है जिसका परिणाम अव्यवस्था और दुराचार होता है। धर्मशास्त्र स्पष्ट कहता है कि परमेश्वर अव्यवस्था का प्रतिपादक नहीं है। जी हां, आज संसार में अव्यवस्था शैतान का काम है। वह इस छोटे से अंग जीव को काम में लेता है जो परेशानियों की जड़ है। यह पद याकूब के अगले अध्याय से अत्यधिक जुड़ी हुई है। वहां वह संसारिकता की व्याख्या को करेगा। यहां पर हम आगे देखते हैं याकूब 3 अध्याय उसके 17 पद में लिखा है, पर जो ज्ञान ऊपर से आता है वह पहले तो पवित्र होता है, फिर मिलनसार, कोमल और मृदु भाव और दया और अच्छे फलों से लदा हुआ और पक्षपात और कपट रहित होता है। लिखा है, जो ज्ञान ऊपर से आता है वह पहले तो पवित्र होता है, अर्थात उसमें मिलावट नहीं होती है, वह मूलभूत होता है। यह बुद्धि स्वर्ग से परमेश्वर हमें देता है। याकूब इस बात को स्पष्ट करता है। जी हां, कहता है वह मिलनसार और कोमल और मृदु भाव और दया और अच्छे फलों से लदा हुआ और पक्षपात और कपट रहित होता है। डॉक्टर शामुएल ज्यूबर कहते हैं कि झूठी शिक्षा सदैव कलह, ईर्ष्या और समस्या को उत्पन्न करती है। वह कहते हैं, आप संसार की दुष्टता को केवल मानवीय नहीं कह सकते, वह मानवीय तथा कुछ और भी है। यही कारण है कि अन्य धर्म सफल हैं, वे लौकिक रूप से अलौकिक हैं। कलीसिया कोई भी हो, विभाजन और कलह प्रभु की ओर से नहीं है। इसे आप गांठ बांध कर रख लें, यह आप निश्चित जानें। आप अपने रूढ़िवादी की डींग मारें, परंतु यदि आप कलह उत्पन्न करते हैं तो आप झूठा दिखावा करते हैं। याकूब की पत्री 3 अध्याय के 18 पद में लिखा है, मिलाप कराने वाले धार्मिकता का फल मेल मिलाप के साथ बोते हैं। मेरे मित्रों, ये विश्वास के फल हैं। शांति से पूर्व धार्मिकता आवश्यक है। काश ये विचार संयुक्त राष्ट्र संघ में व्याप्त हो, संपूर्ण विश्व की राजधानियों में व्याप्त हो, हर एक देश में व्याप्त हो। धार्मिकता के बिना शांति नहीं। भजन संहिता 85 उसके 10 में भजनकार कहता है, करुणा और सच्चाई आपस में मिल गई है, धर्म और मेल ने आपस में चुंबन किया है। आज तो धर्म और मेल एक दूसरे को पहचानते भी नहीं है। मेरे प्रियो, यहां पर हम देख रहे हैं कि परमेश्वर हमारे जीवन को उठाना चाहता है और चाहता है कि हम अपने जीव को नियंत्रण में रखें। अध्याय 3 के साथ याकूब की पत्री का एक मुख्य भाग यहां पर समाप्त होता है, जिसमें याकूब विश्वास की जांच करके उसका सत्यापन करता है। विश्वास में एक अंतर भी है। आप किसी अनुचित बात पर भी विश्वास कर सकते हैं या आप सिर हिलाकर उसे स्वीकार कर सकते हैं, परंतु उद्धारक विश्वास वह है जो कर्म उत्पन्न करे। मेरे प्रियो, इन 3 अध्यायों में याकूब ने विभिन्न विधियां हमें दिखाई हैं, जिनके माध्यम से परमेश्वर हमारे विश्वास को परखता है कि उसे सच्चा सिद्ध करे। सबसे पहले परमेश्वर परीक्षाओं द्वारा हमारे विश्वास को परखता है। मैं आपके साथ एक महान बाइबल शिक्षक डॉक्टर रिचर्ड एच के विचार को बांटना चाहता हूं, जिन्होंने कष्टों का अनुभव किया है। यदि संवेदना के प्रत्येक स्रोत निवारण हो जाए तो पृथ्वी पर जीवन का मूल्य ही नहीं रह जाएगा। परंतु हम में से अधिकांश जन परेशानियों से विद्रोह करते हैं और उन्हें बड़े लाभ की अपेक्षा हानि की बात मानते हैं। कहा जाता है कि सीप बुद्धिमान है क्योंकि वह कष्टदायक रेत के कण को मोती बना देता है। उसका कष्ट मोती बनाने से दूर होता है। अतः एक वास्तविक मोती कष्टों पर विजय का प्रमाण है। अतः हमारे जीवन में आने वाला प्रत्येक कष्ट मोती उत्पाद का अवसर है। शैतान जितने अधिक कष्ट हम पर डालता है उतने ही अधिक मोती हमारे पास हो सकते हैं। हमें उनका स्वागत करना है और उन्हें पूरी तरह प्रेम से ढांक देना है। हमारा वह बहुमूल्य भाग और कष्ट मोती निर्माण द्वारा ठंडे किए जाते हैं। हम चाहें तो हमारे पास मोतियों का कैसा खजाना होगा। अतः हमने देखा है, पहली बात, परमेश्वर परीक्षाओं द्वारा हमारे विश्वास को परखता है। दूसरी बात, परमेश्वर बुराई से नहीं परखता। तीसरी बात, परमेश्वर वचन द्वारा विश्वास को परखता है। और चौथी बात, परमेश्वर हमारे मानव व्यवहार से विश्वास को परखता है। और पांचवी बात, परमेश्वर भले कामों से विश्वास को परखता है। और तब छठवीं बात, परमेश्वर हमारी जीभ से विश्वास को परखता है। मेरे मित्रों, याकूब स्पष्ट करता है कि सच्चा विश्वास विश्वासी के जीवन से ही प्रकट होता है। और इसके उसने 6 उदाहरण हमें दिए हैं कि कैसे हम एक सच्चे विश्वासी के रूप में अपने आप को प्रकट कर सकते हैं। मेरे प्रियो, यह हमारे जीवन के लिए अति आवश्यक है और बहुत ही महत्वपूर्ण है कि हम अपने जीवन में इन बातों को समझें, ताकि हमारे जीवन के द्वारा हम अपने विश्वास को प्रकट कर सकें। यहाँ पर आज हमारे अध्ययन का समय समाप्त होता है और मुझे आशा है कि आज के इस अध्ययन के द्वारा आपने अपने जीवन में अवश्य ही आत्मिक लाभ प्राप्त किया है। प्रभु इस वचन के द्वारा आप सबको बहुताय से आशीष दे और आप सबकी सहायता करे।
प्रिय श्रोता, अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम सत्य वचन। हमें विश्वास है कि आज का ये अध्ययन आपके आध्यात्मिक जीवन के लिए फायदेमंद सिद्ध हुआ है। हम आपसे जानना चाहेंगे कि इस अध्ययन से आपको और क्या क्या आशीष मिली है। हम आपकी जानकारी के लिए बता दें कि आपको देने के लिए हमारे पास नया नियम एवं पूरी बाइबल उपलब्ध है। यदि आप इसे प्राप्त करना चाहते हैं तो हमें इस पते पर लिखें, कार्यक्रम सत्यवचन, TWR इंडिया, पोस्ट बॉक्स नंबर 317, लखनऊ 226001, उत्तर प्रदेश। पता एक बार फिर से सुन लीजिए, कार्यक्रम सत्यवचन, TWR इंडिया, पोस्ट बॉक्स नंबर 317, लखनऊ 226001, उत्तर प्रदेश। आप इस नंबर पर हमें SMS या टेलीफोन भी कर सकते हैं। हमारा मोबाइल नंबर है 9198210018। एक बार फिर से सुन लीजिए, हमारा मोबाइल नंबर है 9198210018। इसके अलावा आप हमें ईमेल भी भेज सकते हैं। हमारा ईमेल आईडी है hindittb@twr.in, hindittb@twr.in। और अब इसी के साथ कार्यक्रम का समय यहीं पर समाप्त होता है। अगले कार्यक्रम में आपसे फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए हमें आज्ञा दीजिए, प्रभु आपको आशीष दे।
परमेश्वर ने हमसे किया यूं प्यार और चाहा कि पापों से ले उबार। परमेश्वर ने हमसे किया यूं प्यार और चाहा कि पापों से ले उबार। प्रायश्चित स्वरूप अपना पुत्र दिया कि विश्वासी उसमें पाए क्षमा का उपहार। ज्योति आई है जग में कर्ण दूर अंधकार, पर उसे यहां नहीं किया गया स्वीकार। परमेश्वर को जानते हुए